أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلے اتوار کو ہم سورہ نحل یعنی 16ویں سورت کے 110 آیات 14 رکوع کر چکے تھے. اس کے آگے انشاءاللہ آج یہ سورت ختم کرنے کی کوشش کریں گے, اور یہ 14واں پارہ بھی انشاءاللہ آج ختم انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها, یعنی ایک دن, اس قیامت کا ریفرنس ہے کہ ہر شخص اپنے لیے درخواست کرتا ہوا, پلیٹ کرتا ہوا آئے گا. قیامت کے دن کا نقشہ ہے کہ ہر شخص جو ہے اپنے بارے میں لڑتا جھگڑتا, درخواستیں کرتا آئے گا, عذر پیش کرے گا, اس طریقے کی بات آ رہی ہے. وَتُوَفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, مگر ہر شخص کو وہی دیا جائے گا جو, یعنی ویسا ہی اجر دیا جائے گا جیسا کہ اس نے عمل کیا ہے, اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. ظلم کے معنی نہ ان پہ گناہ سزا کی زیادتی کی جائے گی, نہ نیکیوں میں کمی کی جائے گی, کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی. جیسا ہمارا عمل رہے گا ویسا ہم کو اجر ملے گا. تو معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ایک نقشہ ایسا ہے. پلیٹ کرتے ہوئے کب آتے آپ, درخواست کرتے ہوئے کب آتے, جب آپ کو معلوم ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب ہے, بس دعا یہ کرنا ہے کہ کاش وہ فیلنگ اب آ جائے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں, سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو اگر ابھی سے ہماری ٹریننگ ایسی ہو تو انشاءاللہ نیک عمل پہ رہیں گے, ورنہ وہاں تو عمل کا ختم ہو گیا, وہاں تو عمل کا نتیجے کا نتیجہ مل, یعنی ریوارڈ کا گھر ہے وہ, تو عمل کا موقع تو ختم ہو گیا. تو اب وہاں جو ہے کوئی جو غلطیاں ہوئی اس کے عذر پیش کرنے کے لیے پلیٹ کرتے ہوئے آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنا قانون بتا رہے ہیں کہ ہر نفس کو, ہر شخص کو وہی ملے گا جو عمل کیا ہے اور اس میں کوئی ناانصافی نہیں کی. اور یہ بڑی اہم آیات ہیں بعض ایسی جو ہمارے پرسنل لائف پہ اس کا امپیکٹ ہونا چاہیے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً, اور اللہ تعالیٰ ایک بستی یا ایک شہر کی مثال دیتا ہے کہ وہ بڑے امن اور اطمینان میں تھی. دیکھیے یہ سچویشن ہم اپنا بھی اپنے آپ پہ اپلائی کر کے, درس قرآن کا مطلب یہی ہوتا کہ بھائی ہم سمجھیں اور ان چیزوں کو اپنے آپ پہ اپلائی کریں. تو یعنی ایک ایسی بستی تھی جو بالکل امن میں بھی تھی اور اطمینان میں تھی. تو انہوں نے کیا کیا, فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا, کفران نعمت جس کو بولتے, جھٹلایا, ناشکری کی. دیکھیے بڑے مزے میں ہے کھاتے پیتے, آپ انڈیویجول اپنی فیملی بھی لے لیجئے, کسی شہر کا بھی معاملہ لے لیجئے, کہ اللہ تعالیٰ کی نوازش ہو رہی ہے, ہر طرف سے جو ہے رزق مل رہا ہے, کھا رہے پی رہے مزے میں ہیں. لیکن انہوں نے ناشکری کی, اللہ تعالیٰ کی قدردانی نہیں کی. شکر کا مطلب کیا ہے, ایکنالج کرنا, مان لینا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہم پہ ہے. دیکھیے میں اپنے کوالیفیکیشن سے نہیں کماتا, میرے فیملی بیک گراؤنڈ سے نہیں کماتا, میری صلاحیتوں سے نہیں کماتا. کئی صلاحیت کے لوگ ہیں جو پڑے ہوئے ہیں, اور کئی ایسے ویسے جن کو آپ پلٹ کے پوچھیں گے نہیں, کروڑ پتی لکھ پتی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب نوازش ہو رہی ہے تو اس کا شکر ادا کرنا. اور پھر ایک جگہ پہ آیا کہ تم اگر شکر کرو گے تو ہم اور زیادہ دو, اور ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ غنی و حمید ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ ہے وہ. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ میں بیچ میں کہا ہے تو پیس چھوٹ گیا, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً, یعنی بالکل امن میں تھے اور اطمینان میں تھے. یاتیہم رزقھا رغدًا من کل مکان, ان کو ان کا رزق زیادتی میں ہر طرف سے آتا تھا. یعنی کیسا امن میں اور اطمینان میں تھے کہ رزق تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, رزق جو ہے ہر جگہ سے, ہر طرف سے جو ہے ان کے پاس آتا تھا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی. تو کیا ہوا, فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا ان کے اعمال کی وجہ سے. دیکھیے شکر کی جو تقاضا ہے, شکر کا دل میں شکر کی کیفیت ہونا اور عمل قرآن اور حدیث پہ ہونا. خالی شکر سے بات نہیں ہوتی. آپ شکر مان لیے, ایکسیپٹ کریں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, وہ بات الگ ہے, لیکن اس کا ثبوت آپ کے عمل سے ہونا. अब यहाँ उसका सबूत मिल रहा है कि बिमा कानू यसनऊन, वो जो भी अमल करते थे उसकी वजह से जो है इनको तबाही आई। क्या तबाही आई? कि इनको भूख और खौफ का जो है लिबास पहना दिया गया। भूख और खौफ का लिबास पहनाने का क्या मतलब है? आदमी भूखा कब रहता? कि भाई अमीर थे गरीब हो गए, ऐसी कई मिसालें आपको मिलते। और बेखौफ थे खौफ में मुब्तला हो गए, और भूख और खौफ में ऐसा मुब्तला हो गए कि जैसा कपड़े जिस्म से लपटे हुए रहते उस तरीके से इनके जिस्म से भूख और खौफ लपट गए। तो किस चीज की सजा थी? कि इन्होंने अल्लाह ताला की नेमतों की कदर नहीं की। तो यहां मालूम होता है कि हमको गिन गिन के सोच सोच के अल्लाह ताला की नेमतें हमारी जिंदगी में जितनी है, चल रहे फिर रहे देख रहे खा रहे पी रहे, फर्ज कीजिए अंधा बना दे, बहरा बना दे, गूंगा बना दे, फालिज में डाल दे, कई चीजें हैं जो आजमाने के लिए अल्लाह ताला मुब्तला कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला की नेमतों को हम याद करें, अपने जिंदगी में गौर करें और उसका शुक्र करें। और इससे जो लेसन मिलता है कि नाशुक्री ना करें, वरना नाशुक्री की सजा इस तरीके से मिलती है। वलकद जाअहुम रसूलुम मिनहुम, और उनके पास उन्हीं में से रसूल, वो एक रसूल को भेजा गया। फकज़बूहू, और तो उन्होंने उनको झुटलाया। फअख़ज़हुमुल अज़ाबु वहुम ज़ालिमून, तो अजाब ने उनको आ पकड़ा, और जबकि वो जो है जुल्म में मुब्तला थे, ना इंसाफी में मुब्तला थे। अब यहाँ जो है ये इम्परेटिव टेंस जिसको बोलते, ये वाकया एक बस्ती का आने के बाद हम लोगों को हुक्म आ रहा है। फकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबन वश्कुरू नेमतल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, कि अल्लाह ताला ने जो तुमको हलाल जायज, और तैयब का मतलब क्या है? पाक फायदामंद रिज़्क़ जो दिया है उसको खाओ, और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करो। अगर तुम उसी की इबादत करते हो, उसी की गुलामी करते हो, तो ये दोनों जो है, ये फकुलू भी जो है हुक्म है, वश्कुरू भी जो है हुक्म है। खाओ, अल्लाह ताला जो रिज़्क़ दिया है हलाल और तैयब पाक। तैयब हलाल का मतलब क्या है? जो जायज है, हराम तो खाना नहीं है। इसके बाद की आयत आ रही है क्या क्या हराम किया गया। और तैयब का मतलब, तैयब पाक को भी बोलते हैं, फायदा मंद को भी बोलते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो फायदा मंद पाक रिस्क दिया है खाओ, लेकिन क्या करो? वश्कुरू नेमत अल्लाह, तुम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करो, एक्सेप्ट करो, मानो कि अल्लाह ताला का शुक्र है। अगर तुम उसी की इबादत करते हो, उसी की गुलामी करते हो, नाऊज़ु बिल्लाह उससे हटके अगर तुम किसी और की गुलामी करते हो, तो फिर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो उनके बारे में सजा की भी बात आ गई। अब यहां जो है ये बड़ी जो हुरमत है हमारे पास, जो चीजें हराम की गई हैं, उसके बारे में कई जगह रिपीट हुआ, यहां फिर रिपीट हो रहा है कि इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता व दमा व लहमुल खिंजीरी व मा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही। तो यहां चार चीजों में से तीन चीजें फूड पॉइजनिंग है। पहली चीज क्या है? इन्नमा को समझिए कि सिर्फ ये चीजें हराम की जाती है। इन्नमा का मतलब होता है सिर्फ ये चीजें होती है। क्या है कि इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, यानी मुर्दा जानवर। ये साइंटिफिक रिसर्च हुआ है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में केसेस रिपोर्टेड है कि वो के पुराने लोग जो है मरे हुए जानवर खाते थे तो उसके पॉइजन से वो मर जाते थे। तो मुर्दा जानवर को खाना हराम है, क्योंकि हमारे लिए फायदा मंद नहीं है, नुकसानदेह है मुर्दा जानवर। अब रहा समंदर का जो मुर्दा जानवर है उसको खा सकते हैं। यहाँ भी एक बड़ा साइंटिफिक पॉइंट है कि समंदर में जो सोडियम क्लोराइड होता है, वो सोडियम क्लोराइड प्रिजर्वेटिव रहता है, कि मछली अगर मर भी गई तो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो समंदर के मुर्दा जानवर खाने की इजाजत है, लेकिन जमीन के मुर्दा जानवर के खाना हराम है। इसलिए कि हमारा नुकसान है उसमें। मुर्दा जानवर खाएंगे आप तो वो डीके कई टॉक्सिक कॉम्पाउंड्स, पॉइजनस कॉम्पाउंड्स बन जाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। वह दम और खून भी हराम है। आप किसी भी मेडिकल आदमी से पूछिए कि जो है ब्लड जर्म कैरियर होता है, खून के जरिए जो है जर्म्स फैलते हैं। तो किसी वेस्टर्नर का रिमार्क है, द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ स्लॉटर ऑफ एनिमल्स इज इस्लामिक मेथड ऑफ स्लॉटर ऑफ एनिमल्स। हमारे पास जो जानवर को काटते हैं, क्या करते हैं हम? जख्म करते झट से गला नहीं उठा देते, ब्लड क्लॉट हो जाता, ब्लड बहता नहीं। अगर एकदम जान निकल गई तो ब्लड बहता नहीं, या गर्म पानी में मुर्गी को डाल दिए तो ब्लड नहीं बहता। तो हम क्या करते हैं? वूंड कॉज करते हैं। जानवर का गला काटते तो ब्रेन से ताल्लुक रहता है, जहां छुरी चलती फौरन ब्रेन से इंस्ट्रक्शन आते कि ब्लड फेंको बाहर। तो पूरा ब्लड बॉडी का फेंके जाता तो मिनिमाइज हो जाते। तो कोई वेस्टर्न साइंटिस्ट जो है बोला है कि इस्लामी तरीका जो कुर्बानी का है, जुबा करने का है, मोस्ट साइंटिफिक और मोस्ट हाइजीनिक है, कि ब्लड मिनिमाइज हो जाता। अब हम समझ ही नहीं रहे, अभी बकरीद गुजरी है, बकरे काटे, दुनिया भर के बकरे काटे, खाए, बदहजमी कर लिए, सब करे, मगर ये नहीं सोचे कि कुर्बानी का तरीका ये क्यों था, कुर्बानी का मतलब क्या था, कि भाई औलाद की कुर्बानी के बजाय बकरे की कुर्बानी करना पड़ा। अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम जुबा हो जाते तो सुन्नत इब्राहिमी में औलाद की कुर्बानी करना पड़ता था। तो खुशी इस बात की मनाते कि औलाद के बजाय जो है बकरे की कुर्बानी करना है, और कुर्बानी इस तरीके से इसलिए करते कि पूरा खून जो है, मैक्सिमम खून बकरे का बह जाता है और जर्म्स पूरे जो है निकल जाते हैं, और फिर ये सेहतमंद वो रहता है। वो लहमिल खंजीर, और सुअर का गोश्त। अब जब साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुआ था तो अब इसके बारे में कई इंटरप्रिटेशन आए। अब उन्हीं लोगों ने किताबें लिखी है, मेरे तर्जुमे में एंड में है, इन आयतों के रेफरेंसेस में, एक्सप्लेनेटरी नोट्स में पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं, वो जर्म्स के नाम भी पूरे दिया हूं मैं, वो उन्हीं के किताबों से लेके। तो सुअर के गोश्त में जो है कुछ ऐसे जर्म्स रहते हैं जो कुकिंग टेम्परेचर पे मरते नहीं, जो टेम्परेचर पे आप पकाते वो मरते नहीं हो। तो वो अगर नहीं मरे, रह गए, तो होता है कि आदमी को 105-106 बुखार आ सकता है, वो सीरियस बीमार हो सकता है। तो मालूम हो रहा है कि ये तीन चीजें इसलिए अल्लाह ताला ने हराम की हैं कि ये फूड पॉइजनिंग की हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह भी, और वो जो अल्लाह से हट के किसी और के नाम पे काटा गया हो, तो यहाँ तो लॉयल्टी की, वफादारी की बात है। आप जब अल्लाह को मानते हैं तो फिर दूसरों के नाम पे कुर्बानी कैसा देते आप? जब आप एक अल्लाह को मानते हैं, मखलूक को बिल्कुल हटा दे के जो है खालिक को मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, तो फिर कुर्बानी अल्लाह ताला के नाम पे हो, मखलूक के नाम पे ना हो। तो गैर अल्लाह के नाम पे जो है वो भी हराम है। फमन इस्तुर्रा गैरा बागिन वला आदिन फइन अल्लाह गफूरुर रहीम। अब फर्ज कीजिए कि कोई मजबूर हो गया, भाई बिल्कुल भूख से मर जाएगा, अगर नहीं खाएगा तो भूख से मर जाएगा, तो उस सूरत में अल्लाह ताला गफूरुर रहीम। गफूर रहीम का मतलब क्या है कि उसको उस गुनाह को की सजा से बचा लेंगे, तरस खाएंगे, रहम करने वाले हैं। मगर अगर गैर बाग, ये बागिन किसको बोलते हैं, ख्वाहिश, अगर कोई ख्वाहिश रखाता है, अब एक होटल, बड़े होटल में चले गए, वो चिकन 65, बोले भाई एहतियातन बुला के बेरर को पूछे, मियां ये हलाल है क्या? वो तो उन्हें कहीं को बोलेंगे हराम है, और सब हलाल है, हालांकि कई जगहों पर जो है गर्म पानी में मुंडी डुबा के वो कर देते, अल्लाह का नाम ले लेते, जुबानी होता। देखिए, तमाम एहतियात करना है, हमारे पास उतना नहीं है जितना वेस्ट में है। बाज लोग जो अमेरिका वगैरह जाके आते हैं, उन लोग यही बोलते हैं, वहां गए तो दो ही सवाल ना होते, खाने पीने का हलाल हराम और हिजाब का, क्योंकि हमारे पास अल्लाह के फजल से मिल जाते हलाल। तो यहां ये देखना है कि ये यानी ख्वाहिश से नहीं खाना, और आद का मतलब क्या है, यानी कानून को तोड़ने की नियत से नहीं खाना। जैसा बाज लोग रहते हैं, अरे छोड़ो मियाँ, 1400 पूरा बरस पुराने बातें लगाए, क्या लगाए, आप जी सकते हैं इस दुनिया में बगैर इसके, कानून तोड़ के खा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो ख्वाहिश से खाएंगे और जो कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, अल्लाह के अहकाम के खिलाफ जाएंगे, उनके लिए अल्लाह ताला गफूर और रहीम नहीं है। इंशाल्लाह थोड़ी आयतों के बाद इसकी तफसील फिर हम लेंगे। वला तकुलु लिमा तसीफुल تصیفو الفنتکم الکذیبا حاذا حلالا و حاذا حراما لیفترو علی اللہ الکذب، اور تم جو اپنی زبانوں سے جھوٹ بولتے ہو، اس بول چال میں کسی بھی چیز کے بارے میں بغیر علم کے یہ مت کہہ دو کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ افترا مت باندھو، بغیر قرآن اور حدیث کے علم کے کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں بولنا ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس بہت ہوتا ہے، اب جیسا میرے سے کوئی آ کے پوچھے صاحب یہ ایسا حلال ہے، اب وہ شیطان بولتا ہے میاں تم نہیں بولے تو انہیں بولیں گا، انہوں یہاں درس دیتے بیٹھے، ان کو اتنا نہیں معلوم، بے عزتی ہو جائیں گی، چلو آپ فتوا دے دیے، گھر کو جا کے دیکھے تو معلوم ہوا کہ غلط بول دیے، قرآن کے خلاف بولے، حدیث کے خلاف بولے۔ تو یہ ہم احتیاط کرنا ہے کہ حلال اور حرام کا جو پاور ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہم کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کر سکتے۔ تو تم اپنی جو زبانوں سے جھوٹ بولتے ہو، وہ جھوٹ میں جو ہے ایسا مت کہہ دو کہ فلانی چیز حلال ہے حرام ہے، اس طریقے سے تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان مانو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون, اور بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افترا باندھیں گے وہ سکسیسفل نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں ہم کو صرف قرآن سے معلوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں ہم کو حدیث سے معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں صرف قرآن سے ہی معلوم ہے, اور حدیث قدسی ہے تو اور بات ہے. تو اب آپس میں بحث میں بلا وجہ بول دینا کہ یہ قرآن میں ہے, میں اس سے پہلے کئی وقت بولا ہوں کہ میں بعض لوگوں کو دیکھا ہوں آپس میں بحث چل رہی ہے, اب ایک صاحب بحث ہار رہے ہیں تو بولے میاں قرآن میں ہے, دونوں قرآن پڑھے رہے نہیں ہیں, انہیں بھی سمجھا ہے شاید قرآن میں, خاموش ہو گئے. قرآن میں ہے ہی نہیں, کہیں ذکر ہی نہیں ہے اس کا. آپ بحث جیتنے کی خاطر بول دیے کہ قرآن میں ہے. تو یہاں بول رہے ہیں کہ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون, یہ سکسیسفل نہیں ہوں گے, یہ ناکام ہوں گے. یہ لوگ بلا وجہ کسی چیز کو قرآن میں ہے بول دینا, یہ ناکام ہوں گے. متاعم خلیل, یہ چھوٹا سا فائدہ ہے, ایک بحث جیت گئے بس, دیٹس آل. کسی سے بحث چل رہی تھی وہ بحث جیت گئے بس, ختم ہو گیا, چھوٹا سا فائدہ ہے. وہ لہم عذاب علیم, اور ان کو تکلیف دہ عذاب ہوگا ایسی جھوٹ بولنے کی وجہ سے. تو ہم حدیث میں بھی بات آئی ہے کہ ایک وقت آدمی کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ اس کو اہمیت نہیں دیتا, اسی کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو جاتی, غلط بات بول دیتا. اور ایک آدمی بعض وقت جو ہے اہمیت نہیں دیتا, کوئی بات بولتا مگر وہ ایسی اچھی بات رہتی کہ اس کی وجہ سے اس کو اجر مل جاتا. تو یہاں ہم کو درس قرآن میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کو انسٹرکشنز کیا مل رہے ہیں. ہم کو انسٹرکشنز یہ مل رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم کو قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے تو اپنا جھوٹ ایسا مت بولو کہ یہ قرآن میں ہے, یہ حدیث میں ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, ایسا مت بولو. انویسٹیگیٹ کر لو کہ یہ ہے یا نہیں ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا خَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ, اور وہ لوگ جو یہودی ہیں ہم نے ان پہ جو حرام کیا تھا اس سے پہلے آپ کو پڑھ کے سنا دیا تھا. یعنی کیا ہے, پنجوں کے جانور یہودیوں پہ حرام تھے اور چربی جو ہے حرام تھی, سزا کے طور پہ حرام تھی. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, اور ہم نے ان پہ زیادتی نہیں کی, ہم نے ان پہ ظلم ناانصافی نہیں کی, انہوں نے اپنے آپ پہ زیادتی کی ناانصافی کی. اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا, بندے ہی ظلم کرتے ہیں. اب یہاں دیکھیے کہ حرام جو کیا ہے کن کن وجوہات کی وجہ سے, کن کن ریزن سے کیا ہے. پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ نقصان دہ چیز کو حرام کیا ہے. شراب نقصان دہ ہے, جوا نقصان دہ ہے, اب یہ مردہ جانور نقصان دہ ہے, خون نقصان دہ ہے, یہ تمام چیزیں نقصان دہ, اس کو حرام کیا ہے. پھر سزا کے طور پہ حرام کیا ہے, یہودیوں کو پنجے کے جانور اور چربی جو ہے حرام کیا. اور پھر تیسرے آزمائش کے طور پہ حرام کیا بازو, کہ تالوت کی فوج جب نکلی تھی مومن مسلمانوں کی لڑنے کے لیے, تو ایک ندی جب کراس کرے تو ان کی آزمائش ہوئی کہ اس ندی سے جو بھی تالوت کا ساتھ دیں گے, اللہ تعالیٰ کا جو ساتھ دیں گے تالوت کے ماتحت ہو کے, تو ان اگر جو بھی وہ ندی سے پیے گا تو ہم میں سے نہیں ہوگا. ہاں ایک چلو پانی اگر پی لے تو وہ اور بات ہے, تو پانی حلال چیز ہے, آزمائش کی خاطر جو ہے حلال چیز حرام ہوئی. پھر اس کے بعد میں چوتھے روزے میں کئی حلال چیزیں حرام ہو جاتی, کھانا پینا اپنے بیویوں وغیرہ سے ملنا کرنا, یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. اور پانچواں غیر اللہ کے نام پہ جو چیزیں کی جاتی ہیں وہ بھی حرام. تو معلوم ہوا کہ پانچ ریزنز جو ہیں اس کے ہوتے ہیں. اب یہاں آپ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالت ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم, اور بے شک اس کے بعد آپ کا پالنے والا مالک وہ لوگ جو لا علمی میں غلطی کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد میں توبہ کرتے ہیں اور یعنی کہ اصلاح کرتے ہیں, بے شک آپ کا پالنے والا اس کے بعد غفور اور رحیم ہے, ان کو اس کی سزا سے بچانے والا ہے ترس کھا کر. دیکھیں اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ جہالت میں گناہ ہو گیا, علمی نہیں تھا, ایسا نہیں معلوم تھا. ایسا کئی وقت ہوتا ہے, ایسا بعض چیزیں نہیں معلوم رہتی تو بعد میں جب معلوم ہوا تو معلوم ہوتا کہ ارے بھائی معلوم نہیں تھا, دیکھو ایسی بات ہو گئی, تو فوراً آپ جو ہے توبہ کرے اور وہ بات کو چھوڑ دیے. تو یہاں بھی وہ سٹیجز آ گئے, توبہ کرنا سیدھے راستے کی طرف آنا, اصلاح کرنا اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. اب جیسا کسی کی زمین مار کے کھا گئے تھے, ہاں اب آپ ایسی آیت پڑھے پڑھ کے توبہ کرے بولے آپ کی زمین کسی کی نہیں مار کے کھاؤں گا, مگر وہ زمین واپس نہیں کر رہے ہیں آپ جس کی مار کے کھائے تھے, تو یہ توبہ نہیں ہوئی. तौबा तो यह है कि जिसकी जमीन मार के खाए थे वो जमीन वापस कर दीजिए आप उनको, ये तौबा है। और उसके बाद में फिर किसी की जमीन मत मार के खाइए, ये इस्लाह है। तो अब अगर आप देखें पिछले संडे को जो लास्ट आयत हम पढ़े थे मगफिरत की, जो किसकी मगफिरत होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे जहनों में बैठना है। हम लोगों को शैतान भटकाया है मगफिरत के बारे में, अल्लाह गफूर और रहीम है, बेशक अल्लाह ताला गफूर और रहीम है, लेकिन किन के लिए गफूर और रहीम है। पांच आयतें आ रही हैं। पहली आयत जो समझ में आती है, सुम्मा इन्ना रब्बिका लिल्लज़ीना हाजरू मिन बादी मा फुतिनू सुम्मा जाहदू व सबरू इन्ना रब्बिका मिन बादीहा लगफूरुर रहीम। क्या बोल रहे हैं कि फिर बेशक आपका पालने वाला मालिक उन लोगों के लिए जिन्होंने सताए जाने के बाद, आजमाइश में डाले जाने के बाद हिजरत की, अल्लाह ताला के राह में निकल दिए, निकल गए, सुम्मा जाहदू और फिर अल्लाह ताला के दीन को कायम रखने के लिए, कायम करने के लिए उन्होंने सख्त कोशिश की और इस कोशिश में जो तकालीफ हुए उस पर सब्र की, तो इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम। तो मालूम हो रहा कि जिन्होंने हिजरत की और जहाद किया और सब्र किया उनके लिए अल्लाह ताला गफूरुर रहीम। ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह की राह में घर छोड़ देना, अल्लाह के दीन को कायम रखने के लिए जद्दोजहद करना, कोशिश करना, सख्त कोशिश करना और वो कोशिश में जो तकलीफ होती है उस पर सब्र करना, इसके बाद अल्लाह ताला गफूर और रहीम, गुनाहों की सजा से बचाने वाले और रहम करने वाले। दूसरा स्टेज आ रहा, यहां बात आ रही है, फमनिस्तुर्रा गैरा बागिम वला आदिम फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये कोई हराम चीज मजबूरी में अगर कोई खा लिया हो तो अल्लाह ताला गफूरुर रहीम, ना ख्वाहिश से खाया, ना कानून की खिलाफ वर्जी करने के लिए खाया, बल्कि जो है मजबूरन, ऐसा मालूम हो रहा था कि अगर नहीं खाता तो बेहोश हो जाता था, गिर जाता था, इसलिए खा लिया, तो उसके लिए गफूर रहीम है। फिर तीसरी बात आ रही है कि सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना अमिलु सूअ बिजहालतिन, फिर उसके बाद में यानी आपका पालने वाला मालिक गफूर रहीम है किसके लिए, जो जहालत में, ला इल्मी में, नॉलेज नहीं रहने की वजह से गलती कर देते हैं, फिर तौबा करते हैं और फिर अपने अमल को सीधा करते हैं, उनके लिए गफूर हो रही है। हाँ, फिर उसके बाद में चौथा, हम पहले पढ़ चुके हैं सूरह माईदा की 9वीं और 10वीं आयत है कि वादल्लाहु लजीना आमनू आमिलु सालिहाती लहुम मगफिरतुम व अजरुन अजीम वल्लजीना कफरू व कज़बू उलाइका हुमुल असाबुल जहीम। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अमल साहले किए उनके लिए मगफिरत है और बड़ा अजर है, वो लोग जो कुफर किए और झुटलाए उनके लिए तो दोजख है। तो मैं ऐसी चीजों को एक मिसाल से अक्सर समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई आप दो बड़ाइयों को दो मेज बनाने का ऑर्डर दिए, 2,000 रुपये बात हुई, दोनों बड़ाइयों को 1,000 एडवांस दिए, एक बड़ाई मेज बना के लाया लेकिन हुआ ये कि वो पाए के पास एक लाते लाते थोड़ा सा चिप निकल गया। वो लाके बोला साहब मैं रिक्शा में ला रहा था, वो थोड़ा चिप निकल गया। अब बोले भाई गरीब आदमी है, चलो माफ कर दिया, आप 1,000 जो बाकी थे उसके दे दिए, गफूर और रहीम, माफ कर दिया आप उसको, मगफरत कर दिया, माफ कर दिया, तरस खा के माफ कर दिया। दूसरा बड़ाई 1,000 रुपये एडवांस लेके भाग गया, उन्हें मिला आपको रास्ते में, क्या करेंगे आप, गले मिलेंगे उस, आप उसको पकड़ के फौरन पुलिस में देंगे, विश्वास करके एडवांस लेके भाग गया। तो मगफिरत उन्हीं लोगों की होगी जो नेक अमल करते हैं, ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं, उस अमल में जो गलतियां हो गई हैं उनकी मगफिरत होगी। मैं, मेरा ओपिनियन नहीं है, कुरान की चार पांच आयत आपके सामने कोट करके बता रहा हूं। अब शैतान क्या बोलता, नऊजु बिल्ला पत्ते खेल रहे, बिस्मिल्लाह बोल के जो है पत्ता खींचे, अल्लाह के नाम पे खींच रहे पत्ता, और उसके बाद में अगर कोई बोले तो बोले भाई अल्लाह गफूर रहीम है, हाँ भाई आप बहुत नेक आदमी वो है, कुछ तो भी टॉन्ट्स कर दिए, अपना किस्सा खत्म कर दिया। तो यहां इस पे ज्यादा ड्वेल करने का मतलब यही है कि हमारे जहनों में ये हो कि ईमान लाने के बाद कुरान पे वैसे ही अमल करना जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, इस अमल में अगर कोई कोताही हो गई, कोई कमी हो गई तो अल्लाह ताला गफूर रहीम। आप ईमान ही नहीं लाते, अमल ही नहीं करते तो फिर सजा किसको देंगे, फिर शदीदुल इकाब भी है ना अल्लाह ताला, वो भी एक ग्रुप होना है ना, मारने के वास्ते, उनको सजा देने के वास्ते। तो ये रहनों में बैठना है कि ऐसा करने के बाद अगर कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह माफ करने वाले हैं। इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन खानतन लिल्लाही हनीफा, बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक उम्मत थे। मुझे तो इसका ट्रांसलेशन ऐसा दिखता कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज एन इंस्टीट्यूट बाय हिमसेल्फ, एक इदारा थे, सर चश्मा थे, जरिया थे दीन को फैलाने का, और खानता यानी फरमा बरदार थे। कैसे फरमा बरदार थे? वो लेवल की फरमा बरदारी नहीं मिलती। बेटे की कुर्बानी दो बोले तो फरमा बरदारी में दे दिए, बेटे की लिटा दिए कुर्बानी के वास्ते, ऐसे फरमा बरदार थे। और हनीफा यानी तमाम चीजों को छोड़कर अल्लाह ताला की तरफ एक सू होके लग जाना, जैसे इसका ऑपोजिट मुलहिद है, तमाम अच्छी चीजों को छोड़ के गलत चीजों की तरफ लग जाना। हनीफ कौन होता है? जो तमाम गलत चीजों को छोड़ के अच्छी चीज की तरफ लग जाता। और वलम यकुम मिनल मुशरिकीन, और ये मुशरिकीन में से नहीं थे, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करते थे। यानी लिमिट हो गई कि बेटे की मोहब्बत भी अल्लाह ताला की मोहब्बत में शरीक नहीं हुई। और करके देखिए, आप अपने आप को इमेजिन कीजिए, वहां थोड़ी देर मैं भी इमेजिन कर लेता हूं कि अगर ऐसा तकाजा होता कि सब में बड़ी औलाद जो है उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कम से कम, तो आप सोच सकते कि अपनी औलाद को लिटा के आप जो है छुरी चलाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि बस हो गई, आजमाइश हो गई तुम्हारी, उठ, तो बकरे की कुर्बानी का तरीका वो आ गया है। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत की ये लिमिट थी कि बेटे की मोहब्बत भी जो है उसमें शरीक नहीं है। अब ये शिर्क के बारे में ये बात आ रही है कि सात चीजें जो मुझे समझ में आई हैं कि अल्लाह यानी अल्लाह ताला के इख्तदार में किसी को शरीक नहीं करना, अथॉरिटी में, अल्लाह ताला की जात में किसी को शरीक नहीं करना, जैसा ईसा अलैहि सलाम को बेटा बोल दिया, और फिर अल्लाह ताला की सिफात में किसी को शरीक नहीं करना, रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है समझे कि आप कोई और रिस्क दे रहा है, फिर अल्लाह ताला के अहकाम में किसी को शरीक नहीं करना, अति अल्लाह हो अति रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह ताला का हुकुम है, अल्लाह का अल्लाह ताला की इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। नो थर्ड अथॉरिटी हैज बीन मेंशन्ड इन द कुरान। जो अमीर हैं आपके, जिनसे मशवरा ले रहे हैं, बोले अगर वो कुरान और हदीस के खिलाफ जा रहे हैं तो रिवर्ट बैक टू अल्लाह एंड अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो अथॉरिटीज दिए, अगर वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो ठीक है, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो अति अल्लाह हो अति रसूल। तो अहकाम में किसी को शरीक नहीं करना, फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं करना। सोच के देखिए तकाजे, एक एक पॉइंट अपने पे लगा के देखिए, क्या हम अल्लाह ताला के अलावा किसी और अथॉरिटी को नहीं मानते? खैर, जात में नहीं शरीक करते होंगे, सिफात में नहीं शरीक करते, लेकिन अहकाम में तो सारी दुनिया को शरीक करे हुए हैं। कुरान और हदीस के खिलाफ अपने नफ्स को शरीक करे हुए हैं, नफ्स जो हुक्म देता वो मान लेते कुरान और हदीस के खिलाफ। फिर उसके बाद में मोहब्बत में किसी के शरीक नहीं करना, जैसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल आई। इज्जत में किसी को शरीक नहीं करना अल्लाह ताला, जितनी इज्जत अल्लाह ताला को देते हैं वो इज्जत किसी और को नहीं दी जानी चाहिए। ये कुरान से साबित है, मेरे ओपिनियंस नहीं है। और फिर जो सातवां पॉइंट समझ में आया कि अल्लाह ताला से जितना डरना है किसी और से नहीं डरना। तो कामयाबी के पॉइंट्स हैं, सेवन पॉइंट्स हैं। अब ये देखना कि कहीं खुदा ना खास्ता हम लोगों में ऐसी कोई बात तो नहीं है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि शाकिरन ली अन उमी, वो शुक्र करते थे, एक्नॉलेज करते थे हमारे नेमतें जो थी उनको एक्नॉलेज करते थे, मानते थे, और इज्तबाहू व हदाहू इला सिरातम मुस्तकीम, तो अल्लाह ताला ने इनको चुन लिया था और उनको सिरातल मुस्तकीम यानी जन्नत का रास्ता बता दिया था। वो आते ना हो फिर दुनिया हसना, और उनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भी भलाई दी थी। क्या भलाई दी थी भाई? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, यानी चार नस्लों में नबी नबूवत चली। और फिर अल्लाह ताला ने बता दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद नबुवत सिर्फ उन्हीं की प्रोजेनी में चलेगी, उन्हीं के खानदान में चलेगी। लिहाजा इसहाक अलैहिस्सलाम की आखिरी नस्ल जो चली वो याहिया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम आए, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में जो है कोई नहीं आया, आखिरी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान से थे। तो हम हसना जो है बिल्डिंगों को गाड़ियों को इसको समझते हैं। हसना है, मतलब ये है कि दुनिया में भी जो है दीन का ये मर्तबा दिया था कि नबुवत उनके खानदान से हटके किसी और जगह पे नहीं गई। वो इन्नहु फिल आखिरती लमिना सालेहिन, और ये आखिरत में भी जो है इन्हें साले किसको बोलेंगे, जो चीजों को ठीक ठाक करते हैं, हमारे पास आमतौर पर नेक नेक लोगों में होंगे। सुम्मा ओहेना इलेका अनितबा मिल्लत इब्राहिम हनीफा, फिर हमने आप पे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही की कि आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी कीजिए जो एक सो हो गए थे अल्लाह ताला की तरफ। अब ये देखिए, यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी करने का मतलब क्या है, आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ही दीन रहा है, दीन इस्लाम। एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन हुआ, जैसे जैसे हालात बदलते गए, अहकाम बदले। एक जमाने में आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी तो सगे भाई बहन में शायद शादी जायज थी। भाई पहले झोल में एक बेटा बेटी होते थे, दूसरे झोल में एक बेटा बेटी होते थे, पहले झोल का बेटा दूसरी झोल की बेटी, शादी होती थी, प्रोजनी बढ़ने का था, जायज था। उसके बाद में लेजिस्लेशन बढ़ते गया, जैसा जैसा आबादी बढ़ी, अब 1400-1450 बरस पहले एक स्टेज ऐसा आ गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कि फाइनलाइजेशन ऑफ रिलीजन, अब कुरान में कोई तरमीम नहीं हुई, कोई गुंजाइश ही नहीं है कुरान में चेंज करने की, हदीस में चेंज करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो है आप मिल्लत देखिए, मिल्लत और उम्मत में क्या फर्क है। उम्मत एक सोर्स कम्युनिटी, माँ जिसको बोलते हैं, माँ सोर्स होती बच्चों की, उम्मत मोहम्मदी कहा गया है, सोर्स कम्युनिटी है, हम दीन को फैलाने के लिए भेजे गए। मिल्लत इब्राहिम डिक्टेटेड रिलीजन, इमला डिक्टेशन, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो डिक्टेट किया है रिलीजन उसकी पैरवी कीजिए, और वो सब छोड़ के जो है एक सो अल्लाह ताला की तरफ हो गए थे, वो मकाना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से नहीं थे, अल्लाह ताला की जात सिफात अहकामात मोहब्बत वगैरह में किसी में जो है नहीं मिलाते थे किसी। इन्नमा जुइल सब्तु अल्लज़ीन अख्तलफू फीही, और हमने ये जो हफ्ते का दिन बनाया था उन लोगों के लिए जो इसके बारे में इख्तलाफ करने लगे। देखिए हमारा दिन जुमे का है, यहूदी जो है अपने लिए हफ्ता पसंद किए, ईसाई अपने लिए इतवार पसंद किए। अब एक हदीस में बात आई कि आने वालों में हम सब में आखिरी में आए, लेकिन आखिरत में सब में पहले उठाए जाएंगे, जन्नत में डाले जाएंगे। और फिर उसके बाद में एक बात ये आ रही है कि यहूदियों पे जुमे का दिन ऑफर किया गया तो जुमे के दिन को पसंद नहीं करे, जब तो मुसलमान नहीं थे, उम्मत मोहम्मदी तो बहुत हजारों साल के बाद की बात है, तो जुमे का दिन पसंद नहीं है कि हफ्ते का दिन पसंद किए, तो इन्होंने इख्तलाफ किया, जुमे के बजाय हफ्ते का दिन पसंद किया है। ये एक इख्तलाफ ये हुआ कि इन्नमा जाल सब्तु यानी हफ्ते का दिन अल्लज़ीन अख्तलफू, जिन्होंने इसमें इख्तलाफ किया, इख्तलाफ क्या किया, जुमे के बजाय इन्होंने हफ्ते को सेलेक्ट किया, एक इख्तलाफ ये हुआ। दूसरा इख्तलाफ ये हुआ कि सबत के माने ही आराम के हैं, जैसा जुमा में हमारे पास बात यह आती है कि जब जुमा की नमाज की अजा हो जाए तो अपना कारोबार बंद करके नमाज की तरफ चलो, बस उतने पीरियड है। लेकिन यहूदियों को गालिबन सजा के तौर पे यह हुआ था कि पूरा हफ्ते का दिन कोई काम नहीं करना है, और इनकी आजमाइश की खातिर हफ्ते के दिन दरिया में मछलियां उबल के आती थी। अब ये देखे बड़ी आजमाइश हो रही है तो समझे नहीं ये लोग, तो कह रहे हैं कि भाई हफ्ते को क्यों पकड़ना, जुमे की रात को गड़े खोद लेते थे, नाले बनाते थे, पूरे मछलियां गड़े में आ जाते थे, हफ्ते की शाम को खाली गड़े बंद कर देते थे, इतवार को मछलियां निकाल लेते थे। आर्ग्यूमेंट क्या था, सब हम हफ्ते को पकड़े क्या, ये बुक एडजस्टमेंट्स जो अकाउंट्स के होते रहते हैं इस तरीके की बात है, हम हफ्ते को पकड़े क्या, जुमे को ऐसा करें, इतवार को पकड़े हम। तो ये जो इख्तलाफ करते थे जुमे और हफ्ते का और इस तरीके से मछलियां पकड़ने का, उस उनका जो है अल्लाह ताला वो इन्ना रब्बका लयहकुम बैनहुम यौमल क़ियामति फीमा कानू फी यख्तलिफून, बेशक आपका पालने वाला मालिक क़ियामत के दिन इन ये जो इख्तलाफ जिस चीज में कर रहे हैं उसका हुक्म देगा, उसका फैसला करेगा। अब ये बड़ी फिर इम्पोर्टेंट आयत आ रही है तबलीग के ताल्लुक से, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमती वल मौइज़तिल हसनती व जादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। देखिए तीन स्टेजेस यहां बताए जा रहे हैं, उदू इला सबीलिल्लाह सबील रब्बिका यानी बुलाओ अपने पालने वाले मालिक के रास्ते की तरफ,
कुरान और हदीस पालने वाले मालिक का रास्ता कौन सा है? कुरान। वो कुरान को समझाया किससे गया है? हदीस। तो कुरान और हदीस के तरफ बुलाओ लोगों को। कैसा बुलाओ? पहला जो स्टेज आ रहा है बिल हिकमा, हिकमत से बुलाओ। दूसरा जो स्टेज आ रहा है वल मौइज़तिल हसना, और अच्छे वास से डरावे से उनको बुलाओ। वह जादिल हम बिल्लती ही या एहसन, और उनसे बहस मुबाहे से करो बहुत अच्छे तरीके से। अब ये तीन स्टेजेस उलमा बड़ा प्यारा समझा है इसको। देखिए पहला स्टेज तो उलमा का है, आप इल्म वालों के साथ, एजुकेटेड लोगों के साथ जब आप कुरान हदीस की बात करेंगे तो जरा विजडम दानाई की बात करेंगे। आम आदमी की बात अलग होगी, बात समझिए, आम आदमी की बात अलग होगी। जो पढ़े लिखे लोगों से बात होगी तो वो बात बिल्कुल अलग होगी। तो हिकमत, अब आप हिकमत के बारे में आप अगर देखें तो सूरह यूनुस की पहली आयत में ही कुरान को किताबिल हकीम कहा गया, यानी फैसला कुन बात बताने वाली किताब, जो विजडम पे बुनियाद जिसकी हो, कुरान को कहा गया। फिर सूरह अहज़ाब की 34 अगर आयत देखे तो उसमें हदीस को हिकमत कहा गया। अब रेस्ट्रिक्ट हो गया कि अल्लाह ताला के रास्ते के तरफ बुलाओ कुरान और हदीस के जरिए बुलाओ। उल्मा से भी अगर बात करोगे आप दूसरी कौम के तो कुरान हदीस का रेफरेंस देके बात करो। फिर तीसरी अथॉरिटी नहीं आई, फिर उसके बाद में बोले जब आम लोगों से बात करो तो अच्छे वास से बात करो। वास किसको बोलते? थोड़ा सा डरा के बोलना, देखो मियां ऐसा नहीं करे तो दोजख में जलने के इम्कान है। ऐसी नसीहत जिसमें थोड़ा सा डरावा हो। तो आम लोगों से जब बात कर, फिर वास को भी कुरान के लिए लफ्ज दो जगह पे इस्तेमाल हुआ, सूरह बकरा में भी इस्तेमाल हुआ, सूरह आले इमरान में भी। तो फिर मालूम हुआ कि आम लोगों को भी कुरान ही के, कुरान और हदीस के जरिए बुलाओ आम लोगों। देखिए हो रहा यह है कि हम कुरान हदीस को छोड़ के दूसरे सोर्सेज जो पकड़े हैं दावत के, वो फेलियर हो रहा है। मसनून तरीका कुरान हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग कैसी थी, सहाबा की तबलीग कैसी थी, तो यहाँ कुरान से भी ये बात साबित। फिर तीसरा ग्रुप कौन सा होता है, कौन सा जो आपसे बहस मुबाहसे करते हैं? वो ग्रुप बाज वक्त अपने में से ही होते हैं बदकिस्मत लोग, जो कुरान और हदीस के बारे में जो है बहस करते हैं, बाज गैर मुस्लिम होते हैं। तो उनके साथ बोल रहे हैं कि वह जादिल हम बिल्लती ही अहसन, बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ बहस मुबाहसा करो, बहुत अच्छे तरीके से। तो तबलीग का तीन स्टेजेस हो गए। वो जो एजुकेटेड तबका है उसको आप नॉलेज और विजडम की बुनियाद पे करेंगे, वो जो आम लोग हैं उनको वाज़ो नसीहत करेंगे, और वो जो कुरान और हदीस के खिलाफ आपसे बहस करेंगे उनसे आप बेहतरीन तरीके से लॉजिकल बहस करेंगे। जैसा मुझे एकदम याद आ गया कि किसी जगह मेरा प्रोग्राम था कुरान और हदीस पे, तो एक साहब अपनी हमशीरा से मुझे तारुफ करवाया कि साहब ये सोशियोलॉजी के एमए हैं और ये एथिस्ट हैं, अल्लाह ताला को नहीं मानती हैं, तो आप जो है आपसे कुछ बहस करना चाह रही हूँ। तो मेरा प्रोग्राम था, मैं जा रहा था, तो मैं मोहतरमा से बुला के, देखिए ऐसा है मैं प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह आपसे बात करता हूँ, मैं अल्लाह ताला के वजूद के लिए सारी कायनात गवाह के तौर पे पेश करूँगा। अल्लाह ताला के वजूद को साबित करने के लिए सारी कायनात गवाह के तौर पे पेश करूंगा। आप जो बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला मौजूद नहीं है तो उसके लिए भी आपको गवाही पेश करनी पड़ेगी। तो खैर मैं टॉक चला रहा था, उस बैठे हुए थे, निकल के चले गए, टॉक खत्म हुए तो उनके भाई साहब बाद में बोले कि साहब ऐसा है आप पूरी कायनात ले लिए, उनको छोड़े नहीं गवाही के वास्ते कुछ भी होगी। आर्ग्यूमेंट में क्या वो करेंगे? तो बाज लोग ऐसे रहते कि उनको बात, ये बिल्कुल हकीकत बात है कि अल्लाह ताला के वजूद के लिए अल्लाह ताला भी कुरान में सारी कायनात पेश करें कि ये देखो दिन रात की हेर फेर, देखो तुम कैसा पैदा हुए, देखो तुम्हारे दुख बीमारी को, देखो तुम्हारे रिस्क को, देखो अनाज को, देखो ये तमाम चीजों पर गौर करो। तब ये जो बहस मुबाहसा जब होगा तो उनसे अल्टीमेटली यही पूछना पड़ेगा कि भाई ये कौन किया है, कौन किया है ये जमीन को बनाया, कौन ये आसमान को बनाया, कौन इतने गैलेक्सीज कौन बनाया, ये जानवरों के इतने स्पीशीज कौन बताया। और बताते हैं कि 1% ऑफ द स्पीशीज क्रिएटेड इस वक्त हैं, 99% ऑफ द स्पीशीज आर एक्सटिंक्ट। क्रिएशन जब हुआ तो 99% ऑफ द मैटर वॉज एनिहिलिएटेड, 1% रिमेन्ड, दैट इज द यूनिवर्स नाउ प्रेजेंट। जो बिलियंस ऑफ टन्स के जो है गोले हैं हवा में मौलक फिर रहे हैं, पंखा है लटका हुआ है, ये पिलर पे है, बिलियंस ऑफ टन्स का। तो अब ये जिनसे आप जो कुरान और हदीस के खिलाफ जो बात करेंगे, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, उनके साथ अच्छी तरीके से बहस करो, आप एकदम गुस्से में मत आओ, आप ये तमाम चीजें जो है पेश करो उनके सामने। और फिर इन रब्बे का हुआ आलम बिमन जल्ला अन सबीलिही वो हुआ आलम बिल मुहतदीन, और बेशक आपका पालने वाला मालिक ज्यादा जानता है वो लोगों से जो उसके रास्ते से हटे हुए हैं, और वो ज्यादा जानता है उन लोगों को जो रास्ते पे हिदायत हासिल किए हैं और जन्नत के रास्ते पे हैं। वो इन आखब तुम फाखिबो भी मुस्लिमा उखिब तुम भी, और अगर तुम बदला लो तो बदला जितनी तकलीफ दी गई है उतना ही बदला लो। मेरे को एक थप्पड़ मारा है, आपको अगर बदला लेना ही है तो आप एक थप्पड़ मारेंगे, दो थप्पड़ नहीं मारेंगे। वो लईन सबर तुम लहुआ खैरुल साबिरीन, और अगर तुम सबर कर लो तो फिर सबर करने वालों के लिए बेहतर है। मतलब यह है कि बदला लेने की इजाजत है लेकिन माफ करने की तरगीब दी गई है। जैसा हमारे पास बाज लोग बहस में बोलते थे, बचपन में याद आता था भाई, वो क्रिश्चियंस वगैरह में है कि इफ यू आर स्लैप्ड ऑन द राइट चीक ऑफर द लेफ्ट चीक वन, तो हम मजाक से बोलते फिर उन्हें राइट पे मारा लेफ्ट पे मारा, मार मार के गिरा देंगे। तो अब आप मुसलमान वो अपने उसके आस्ते बोलते थे कि भाई हमारे पास ऐसा है, उन्हें एक स्लैप मारा तो तुम भी एक स्लैप मारो। ये बात को भूल गए कि अगर तुम सबर कर लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। बदले की इजाजत है लेकिन सबर करो तो ये बेहतर है। वस्बिर व मा सबरू का इल्ला बिल्लाही, और सबर कीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म आ रहा है कि और सबर कीजिए, और आपका सबर सिर्फ अल्लाह की वजह से। अल्लाह ताला अगर किसी की मदद करके सबर करवा दे तो सबर हो सकता है, वरना अपने पे सबर करना मुश्किल है। वला तहजन अलैहिम वला तुक फी ज़ैगिन ज़ैगिन मिम्मा यमकुरून, और इन पे गम मत कीजिए, ये लोग ईमान नहीं ला रहे हैं, इन पे गम मत कीजिए, और ये जो प्लानिंग कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ इस पे आपका दिल तंग ना हो। इन अल्लाह मा लज़ीना तखौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनीन, और बेशक अल्लाह ताला उन लोगों के साथ है जो अल्लाह से डर के गुनाहों को छोड़ता है, और बेशक अल्लाह ताला उन लोगों के साथ हैं जो मोहसिन हैं। अब ये तखवे और मोहसिन, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें, इसको समझना है कि ये दो कैफियतें हैं। देखिए तखवा भी दिल की कैफियत है, कुरान से साबित है। तखवा क्या है? एक अल्लाह का खौफ, वो खौफ की वजह से गुनाह को छोड़ देना। इससे पहले एक मिसाल दिया था कि भाई एक पीने वाला है, उसको डॉक्टर साहब बोले कि बाबा तुमको सिरोसिस ऑफ लिवर होके तुम मर जाएंगे, तो उन्हें जान से डर के पीना छोड़ दिया। एक पीने वाला है, अल्लाह के फजल से कोई एक ऐसी महफिल में आके बैठ गया, उसको मालूम हुआ कि भाई शराब हराम है, शराब की सजा होगी, दोजख में जलाए जाएंगे, तो अल्लाह से डर के शराब छोड़ दिया। ये मुत्तकी है और नेक अमल करने लगा। फिर तो तखवे का मतलब क्या हुआ? अल्लाह का खौफ डोमिनेट करना और उसकी वजह से गुनाह छोड़ के नेक अमल करना। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल्लिल मुत्तकीन, तखवा। अल्लज़ीना यूमिनूना बिलगैबी व युक़ीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून, तो वहाँ ईमान भी आ गया, अमल भी आ गया। तो मुत्तकी कौन होता है? इल्म हासिल करने के बाद अल्लाह ताला का खौफ उसके दिल में आता है, गुनाहों को छोड़ के ईमान लाता है और नेक अमल करता है, ये मुत्तकी है। मोहसिन कौन है? हुसन क्या है? हुसन का मतलब क्या है? खूबसूरती। खूबसूरती में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप। समथिंग विच इज परफेक्ट, जैसा कुरान है, कुरान में ना कुछ आप ऐड कर सकते हो ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि परफेक्ट है। आज के दिन हमने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया, कामिल, परफेक्ट कर दिया। तो अब मुहसिनीन कौन है? परफेक्शनिस्ट है। जैसा मैं बार बार जोहर की नमाज की मिसाल देता हूं कि भाई चार रकात फर्ज आपके ऊपर फर्ज थे, आप फर्ज चार रकात पढ़ लेते तो फर्ज अदा हो जाता था, लेकिन आप चार रकात सुन्नत भी पढ़े पहले, फिर दो रकात सुन्नत पढ़े, फिर दो रकात नफिल अपने तरफ से पढ़े एडिशनल, नफिल का मतलब एडिशनल। अब आप क्या करें भाई, ये चार रकातों को पॉलिश करके परफेक्ट करके जो है अल्लाह ताला की खिदमत में पेश करें। तो फिर मैं मिसाल वही देता हूँ कि भाई ये खंबा अपना काम कर सकता था, अगर इस पे प्लास्टर नहीं भी रहता, इस पे चूना नहीं भी रहता तो काम करता था अपना, लेकिन कमेटी वालों ने समझा कि भाई इस पे प्लास्टर करें और इसको कलर करें, تو تھوڑی خوبصورتی آ جائے گی. تو محسنین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان سے زیادہ کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک, ابھی دیکھیے یہ اتنی بڑی بات ہے, ان اللہ ما الذین اتقوا والذین هم محسنون, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں. اب پورے وی آئی پی لیڈرز آئے ہوئے ہیں, فرض کیجئے کوئی ایک بڑا لیڈر بلا کے میرے کو بول دیا آپ میں آپ کے پیچھے ہوں, میں ساتھ ہوں آپ کے, جو کرتے کر لو, تو کیا حالت ہو جائیں گی؟ بولے صاحب یہاں کا چیف منسٹر میرے کو بولا, میں یا ساری کائنات کا ہیڈ جو بول رہا ہے کہ اگر تم کو میرا ساتھ ہونا ہے تو مجھ سے ڈر کے گناہ چھوڑ کے نیک عمل کرو اور اپنے اعمال میں حسن پیدا کرو تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں.